पर इतनी मितव्ययिता पर भी वह अपनी अवस्था की तुलना जिले के सब इंजीनियर या कतिपय वकीलों से करते थे तो उन्हें विशेष आनंद न होता था। यद्यपि उन्हें कभी कभी ऐसे अवसर मिलते थे जो उनकी आर्थिक कामनाओं को सफल कर सकते थे, पर उनकी विचारशीलता भी उन्हें भागने न देती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद कई वर्ष तक उन्होंने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया था, लेकिन जब कई बार पुलिस के विरुद्ध गवाही देने पर मुंह की खानी पड़ी तो चेत गए। वह नित्य पुलिस का रुख देखकर अपनी नीति स्थिर किया करते थे। इस पर भी अपने निदानों को पुलिस की इच्छा के अधीन रखने में उन्हें मानसिक कष्ट होता था। अतएव जब गौस खां की लाश उनके पास निरीक्षण के लिए भेजी गई तो वह बड़े असमंजस में पड़े। निदान कहता था कि यह एक व्यक्ति का काम है, एक ही बार में काम तमाम हुआ है, किंतु पुलिस की धारणा थी कि यह एक गुट का काम है। बेचारे बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। यह महत्वपूर्ण अभियोग था। पुलिस ने अपनी सफलता के लिए कोई बात उठा नहीं रखी थी। उसका खंडन करना उससे बैर मोल लेना था और अनुभव से सिद्ध हो गया था कि यह बहुत महंगा सौदा है। गुनाह था मगर बेलज्जत। कई दिनों तक इसी हैंस बहस में पड़े रहे पर बुद्धि कुछ काम न करती थी। इसी बीच में एक दिन ज्ञानशंकर उनके पास रानी गायत्री देवी का पत्र और 500 पारितोषिक लेकर पहुंचे। रानी महोदया ने उनकी कीर्ति सुनकर अपनी गुड़ ग्राहकता का परिचय दिया था। उनसे शिशुपालन पर एक पुस्तक लिखवाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना गृह चिकित्सक भी नियत किया था और प्रत्येक विजिट के लिए 100 का वादा था। डॉक्टर साहब फूले न समाए। ज्ञानशंकर की ओर अनुग्रहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, श्रीमती जी की इस उदार गुण ग्राहकता का धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप मुझे अपना सेवक समझिए। यह सब आपकी कृपा दृष्टि है, नहीं तो मेरे जैसे हजारों डॉक्टर पड़े हुए हैं। ज्ञानशंकर ने इसका यथोचित उत्तर दिया। इसके बाद देश काल संबंधी विषयों पर वार्तालाप कर होने लगा। डॉक्टर साहब का दावा था कि मैं चिकित्सा में IMS वालों से कहीं कुशल हूँ और ऐसे असाध्य रोगियों का उद्धार कर चुका हूँ जिन्हें सर्वत्र IMS वालों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में इस पराधीनता से मुक्ति होने की आशा नहीं है। मेरे भाग्य में विलायत के नवशिक्षित युवकों की मातहती लिखी हुई है। ज्ञानशंकर ने इसके उत्तर में देश की राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख किया। चलते समय उनसे बड़े निस्वार्थ भाव से पूछा, लखनपुर के मामले में आपने क्या निश्चय किया? लाश तो आपके पास यहाँ आई होगी। प्रियनाथ, जी हाँ, लाश आई थी। विचार चिन्ह से तो यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि यह केवल एक आदमी का काम है, किंतु पुलिस इसमें कई आदमियों को घसीटना चाहती। आपसे क्या छुपाऊं, पुलिस को असंतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यूं निरापराधियों को फंसाते हुए आत्मा को घृणा होती है। ज्ञानशंकर, संभव है आपने चिन्हों से जो राय स्थिर की है वही मान्य हो, लेकिन वास्तव में हत्या कई आदमियों की साजिश से हुई है। लखनपुर मेरा ही गांव है। प्रियनाथ, अच्छा, लखनपुर आपका ही गांव है, तो यह कारिंदा आपका नौकर था? ज्ञान, जी हाँ, और बड़ा स्वाभाविक, अपने काम में कुशल। गांव वालों को इससे केवल यही चिड़ थी कि वह उनसे मिलता ना था, प्रत्येक विषय में मेरे ही लाभ हानि का विचार करता था। यह उसकी स्वाभाविक स्वामी भक्ति का दंड है, लेकिन मैं इस घटना को पुलिस की दृष्टि से नहीं देखता। हत्या हो गई, एक ने की या कई आदमियों ने मिलकर की, मेरे लिए यह समस्या इससे कहीं जटिल है। प्रश्न जमींदार और किसानों का है। अगर हत्याकारियों को उचित दंड न दिया गया तो इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होने लगेंगी और जमींदारों को अपनी जान बचाना कठिन हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न को यह नया स्वरूप देकर ज्ञानशंकर विदा हुए। यद्यपि हत्या के संबंध में डॉक्टर साहब की अब भी वही राय थी, लेकिन अब यह गुना बेलज्जत न था। 500 का पारितोषिक, 500 फीस, साल में 1000-2000 मिलते रहने की आशा, उस पर पुलिस की खुशनुदी अलग। सब आगे पीछे की जरूरत न थी। हाँ, अब अगर भय था तो डॉक्टर इरफान अली की जिरह होगा। डॉक्टर साहब की जिरह प्रसिद्ध थी। अतएव प्रियनाथ ने इस विषय में कई ग्रंथों का अवलोकन किया और अपने पक्ष समर्थन के तत्व खोज निकाले। कितने बेगुनाहों की गर्दन पर छुरी फिर जाएगी, इसकी उन्हें एक क्षण के लिए भी चिंता न हुई। इस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। ऐसे अवसरों पर हमारी दृष्टि कितनी संकीर्ण हो जाती है। दिन के 10 बजे थे। डॉक्टर महोदय ग्रंथों की पोटली लेकर खिटन पर सवार होकर कचहरी चले। उनका दिल धड़क रहा था, जिरह से उखड़ जाने की शंका लगी हुई थी। वहां पहुंचते ही मजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया। जब वह कटघरे के सामने आकर खड़े हुए और अभियुक्तों को अपनी ओर दीन नेत्रों से ताकते हुए देखा तो एक क्षण के लिए उनका चित्त अस्थिर हो गया, लेकिन यह एक क्षण आवेश था, आया और चला गया। उन्होंने बड़ी तात्विक गंभीरता और मर्मज्ञता भाव से इस हत्याकांड का विवेचन किया। चिन्हों से यह केवल एक आदमी का काम मालूम होता है, लेकिन हत्याकारियों ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। इस विषय में वे बड़े सिद्धस्थ होते हैं। मृत्यु का कारण कुल्हाड़ी या गणासे का आघात नहीं बल्कि गले का घोटना है, और कई आदमियों की सहायता के बिना गौस खां जैसे बलिष्ठ मनुष्य का गला घोटना असंभव है। प्राणांत हो जाने पर एक वार से उसका गर्दन काट ली गई है, जिसमें यह एक ही व्यक्ति का कृत्य समझा जाए। इरफान अली की जिरह शुरू हुई, आपने कौन सा इम्तहान पास किया है? मैं लाहौर का LMS और कलकत्ते का MB हूँ। आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष। आपका मकान कहाँ है? दिल्ली। आपकी शादी हुई है? मगर हुई तो औलाद है या नहीं? मेरी शादी हो गई और कई औलादे हैं। उनकी परवरिश पर आपका माहवार कितना खर्च होता है? इरफान अली प्रश्न ऐसे पांडित्यपूर्ण स्वभाव से पूछ रहे थे मानो इन्हीं पर मुकदमे का दारमदार है। प्रत्येक प्रश्न पर ज्वाला सिंह की ओर गर्व के साथ देखते, मानो उनसे अपने प्रखर नैयायिकता की प्रशंसा चाहते। लेकिन इस अंतिम प्रश्न पर मजिस्ट्रेट ने ऐतराज किया, इस प्रश्न से आपका क्या अभिप्राय है? इरफान अली ने गर्व से कहा, अभी मेरा मंशा जाहिर हुआ जाता है। यह कहकर उन्होंने प्रियनाथ से जिरह शुरू की। बेचारे प्रियनाथ मन में समय जाते थे, मालूम नहीं यह महाशय मुझे किस जाल में फांस रहे हैं। इरफान अली, आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपके यहाँ माहवार कितना दूध आता है और उसकी क्या कीमत देनी पड़ती है? इसका हिसाब मेरे नौकर रखते हैं। घी पर माहवार कितना खर्च होता है? मैं अपने नौकरों से पूछे बगैर इन गृह संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। इरफान अली ने मजिस्ट्रेट से कहा, मेरे सवालों के काबिल इत्मीनान जवाब मिलने चाहिए। मजिस्ट्रेट, मैं नहीं समझता कि इन सवालों से आपका मंशा क्या है। इरफान अली, मेरा मंशा गवाह की इखलाकी हालत का पर्दाफाश करना है। इन सवालों से मैं यह साबित कर देना चाहता हूँ कि वह बहुत ऊंचे उसूलों का आदमी नहीं है। मजिस्ट्रेट, मैं इन प्रश्नों को दर्ज करने से इनकार करता हूँ। इरफान अली, तो मैं भी जिरह करने से इनकार करता हूँ। यह कहकर बैरिस्टर साहब इजलास से बाहर निकल आए और ज्वाला सिंह से बोले, आपने देखा यह हजरत कितनी बेजा तरफदारी कर रहे हैं? वल्ला मैं डॉक्टर साहब के लत्ते उड़ा देता। यहाँ ऐसी वैसी जिरह न करते, मैं साफ साबित कर देता कि जो आदमी छोटी छोटी रकमों पर गिरता है मैं ऐसे बड़े मामलों में बेलाउस नहीं रह सकता। कोई मुजायका नहीं, दीवानी में चलने दीजिए, वहाँ इनकी खबर लूँगा। इसकी एक घंटा पीछे मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया, सब अभियुक्त सेशन सुपुर्द। संध्या हो गई थी, ये विपत्ति के मारे फिर हवालात चले। सबों के मुख पर उदासी छाई हुई थी, प्रियनाथ के बयान ने उन्हें हताश कर दिया था। वह यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा उच्च पदाधिकारी प्रलोभनों के फेर में पड़कर असत्य की ओर जा सकता है। सभी गर्दन झुकाए चले जाते थे, अकेला मनोहर रो रहा था। इतने में प्रियनाथ की फिटन सड़क से निकली। अभियुक्तों ने उन्हें अवहेलनापूर्ण नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, आपको हम दीन दुखियों पर तनिक भी दया नहीं आई। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें देखा, आंखों में ग्लानि का भाव झलक रहा था। जब मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया और ज्ञान शंकर को विश्वास हो गया कि अब अभियुक्तों को बचना कठिन है, तब उन्होंने गौस खां की जगह पर फैजुल्लाह को नियुक्त किया और खुद गोरखपुर चले गए। यहाँ से गायत्री कई चिट्ठियाँ गई थीं, माया शंकर को भी साथ लाए। विद्यापति ने बहुत कहा कि मेरा जी घबराएगा, पर उन्होंने न माना। इस महीने में ज्ञान शंकर ने यह समस्या हल कर ली जिस पर वह कई सालों से विचार कर रहे थे। उन्होंने वह मार्ग निर्धारित कर लिया था जिससे गायत्री देवी के हृदय तक पहुँच सके। इस मार्ग की दो शाखाएँ थीं, एक विरोधात्मक और दूसरी विधानात्मक। ज्ञान शंकर ने यही दूसरा मार्ग ग्रहण करना निश्चय किया। गायत्री के धार्मिक भावों को हटाना, जो किसी गढ़ की अभेद्य दीवारों की भांति उसके वासनाओं से बचाए हुए थे, दुस्तर था। ज्ञानशंकर एक बार इस प्रयत्न में असफल हो चुके थे और कोई कारण नहीं था कि उस साधन का आश्रय लेकर वह फिर असफल न हो। इसकी अपेक्षा दूसरा मार्ग सुगम और सुलभ था। धार्मिक भाव को हटाने के बदले उन्हें और दृढ़ क्यों न कर दूँ? इमारत को विध्वंस करने के बदले उसी भित्ति पर क्यों न और रद्दे चढ़ा दूँ? पानी के बहाव का रुख पलटने की जगह धारा को और तेज क्यों न कर दूँ? उसको अपना बनाने के बदले क्यों न आप ही उसका हो जाऊँ? ज्ञानशंकर ने गोरखपुर आकर पहले से भी अधिक उत्साह और अध्यवसाय के साथ काम करना शुरू किया। धर्मशाला का काम स्थगित हो गया। अब की ठेकेदारों से काम न लेकर उन्होंने उसे अपनी निगरानी में बनवाना शुरू किया। उसके सामने ही एक ठाकुर द्वारे का शिलारोपण भी कर दिया। वह नित्य प्रति प्रातःकाल मोटर पर सवार होकर घर से निकल जाते और इलाके का चक्कर लगाकर संध्या तक लौट आते। किसी कारिंदा कर्मचारी की मजाल न थी कि एक कौड़ी तक खा सके। किसी शान या चपरासी की ताब न थी कि आसामियों पर किसी प्रकार की सख्ती कर सके और न किसी आसामी का दिल था कि लगान चुकाने में एक दिन का भी विलंब कर सके। सहकारी बैंक का भी काम चल निकला। किसान महाजनों के जाल से मुक्त होने लगे और उनमें यह सामर्थ्य होने लगे कि खरीदारों के भाव पर जिन्स न बेचकर अपने भाव पर बेच सके। ज्ञानशंकर का यह सुप्रबंध और कार्यपटुता देखकर गायत्री की सदिच्छा श्रद्धा का रूप धारण करती जाती थी। वह विधि रूप से प्रत्युपकार की चेष्टा करती, विद्या के लिए तरह तरह की सौगात भेजती और माया शंकर पर तो जान ही देती थी। उसकी सवारी के लिए 2 टागन थे, पढ़ाने के लिए 2 मास्टर, एक सुबह को आता था दूसरा शाम को। उसकी टहल के लिए अलग 2 नौकर थे। उसे अपने सामने बुलाकर नाश्ता कराती थी। आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर उसे खिलाती, उसे कहानियाँ सुनाती और उसकी कहानियाँ सुनती, उसे आए दिन इनाम देती रहती। माया शंकर अपनी माँ को भूल गया। वह ऐसा समझदार, मिष्टभाषी, विनयशील, ऐसा सरल बालक था कि थोड़े ही दिनों में गायत्री से उसे हृदय से प्यार करने लगी। ज्ञान शंकर के जीवन में भी एक विशेष परिवर्तन हुआ। अब वह नित्य संध्या समय भागवत की कथा सुना करते। दो चार साधु संत जमा हो जाते, मेलजोल के 10-5 सज्जन आ जाते, मोहल्ले के 2-4 श्रद्धालु पुरुष आ बैठते और एक छोटी सी धार्मिक सभा हो जाती। यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती, उनकी प्रेम कथाएं सुनाई जाती और कभी कभी कीर्तन भी होता था। लोग प्रेम में मग्न होकर रोने लगते और सबसे अधिक अश्रु वर्षा ज्ञान शंकर की आंखों से होती थी, जो प्रेम के हाथों बिक गए थे। एक दिन गायत्री ने कहा, अब तो आपके यहाँ नित्य कृष्ण चर्चा होती है, पर्दे का प्रबंध हो जाए तो मैं भी आया करूँ। ज्ञान शंकर ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से गायत्री को देख कर कहा, यह सब आप ही के सत्संग का फल है। आपने मुझे यह भक्ति मार्ग दिखाया है और मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ। आज से कई मास पहले मैं माया मोह में फंसा हुआ, इच्छाओं का दास, वासनाओं का गुलाम और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। आपने मुझे बता दिया कि संसार में निर्लिप्त होकर क्यों कर रहना चाहिए। इतनी संपत्तिशालिनी होकर भी आप सन्यासिनी हैं। आपके जीवन में मेरे लिए सदुपदेश का काम किया है। गायत्री ज्ञान शंकर को विद्या और ज्ञान का अगाध सागर समझती थी। वह महान पुरुष जिसकी लेखनी में असामर्थ हो कि मुझे रानी के पद से विभूषित करा दे, जिसके वक्तृताओं को सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज उच्चाधिकारी दंग रह जाएं, इसके सुप्रबंध की आज सारे जिले में धूम है, मेरा इतना भक्त हो, इस कल्पना से ही उसका गौरवशील हृदय विह्वल हो गया। ऐसे सम्मानों के अवसर पर उसे अपने स्वामी की याद आ जाती थी। विनीत भाव से बोली, बाबूजी, यह सब भगवान की दया है, उन्होंने आपको यह भक्ति प्रदान की है, नहीं तो लोग यावत जीवन धर्मोपदेश सुनते रह जाते हैं और फिर भी उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। कभी स्वामी से आपकी भेंट हो गई होती तो उनके दर्शन मात्र से मुग्ध हो जाते। और धर्म और प्रेम के अवतार थे, मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की बनाई हुई हूँ, यथासाध उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करती हूँ, नहीं तो मेरी इतनी गति कहाँ की भक्ति रस का स्वाद पा सकती। ज्ञान शंकर, मुझे भी यह खेद है कि उन महात्मा के दर्शनों से वंचित रह गया, जिसके सदुपदेश में यह महान शक्ति है, वह स्वयं कितना प्रतिभाशाली होगा। मैं कभी कभी स्वप्न में उनके दर्शन से कृतार्थ हो जाता हूँ। कितनी सौम्य मूर्ति थी, मुखारबिंद से प्रेम की ज्योति से प्रसारित होते हुए जान पड़ती साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार मालूम होते हैं। दूसरे दिन से पर्दे की आयोजना हो गई और गायत्री नित्य प्रति इन सत्संगों में भाग लेने लगी। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। कीर्तन के समय लोग भावोन्मत्त होकर नाचने लगते। गायत्री के हृदय में भी यही प्रेम तरंगे उठती, यहाँ तक कि ज्ञान शंकर भी स्थिर चित्त न रह सकते। कृष्ण की पवित्र प्रेम की लीलाएं उनके चित्त को भी एक क्षण के लिए प्रेम से आवासित कर देती थी और इस प्रकाश में उन्हें अपनी कुटिलता और क्षुद्रता अत्यंत घृणोत्पादक दिख पड़ती। लेकिन सत्संग के समाप्त होते ही यह क्षणिक ज्योति फिर सर्वांधकार में विलीन हो जाती थी। बालकृष्ण की भोली भाली किरणाएं, उनकी यह मनोहर तोतली बातें, यशोदा का यह विलक्षण पुत्र प्रेम, गोपियों की वह आत्मविस्मृति, प्रीति के वह भावमय रहस्य, वह अनुराग के उद्गार, वह बंसी की मतवाली तान, वह यमुना तट के विहार की कथाएं लोगों को अतीव आनंदप्रद आत्मिक उल्लास का अनुभव देती थी। भूतवादियों की दृष्टि में यह कथाएं कितनी ही लज्जास्पद क्यों न हो, पर उन भक्तों के अंतःकरण उनके श्रवण मात्र से गदगद हो जाते थे। राधा और यशोदा का नाम आते ही आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती थी। कृष्ण के नाम में क्या जादू है, इसका अनुभव हो जाता था। एक बार वृंदावन में रासलीला मंडली आई और महीने भर तक लीला करती रही। सारा शहर देखने को फट पड़ता था। ज्ञान शंकर प्रेम की मूर्ति बने हुए लोगों का आदर सत्कार करते, छोटे बड़े सबको खाते से बैठाते, स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंध कर दिया था। यहाँ गायत्री उनका स्वागत करती, उनके बाल बच्चों को प्यार करती, मिठाई में बांटती। जिस दिन कृष्ण के मथुरा गमन की लीला हुई, दर्शकों की इतनी भीड़ हुई कि सांस लेना मुश्किल था। यशोदा और नंद की हृदय विदारणी बातें सुनकर दर्शकों में कोहराम मच गया। रोते रोते कितने ही भक्तों की गिग्गी बज गई और गायत्री तो मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। होश आने पर उसने अपने आप को अपने शयन गृह में पाया। कमरे में सन्नाटा छाया था, केवल ज्ञान शंकर उसे पंखा झल रहे थे। गायत्री पर इस समय आलसता छाई हुई थी। जब मनुष्य किसी थके हुए पथिक की भांति अधीर होकर छाया की ओर दौड़ता है, उसका हृदय निर्मल विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। उसने ज्ञान शंकर को बैठ जाने का संकेत किया और तब शैशवोचित सरलता से उनकी गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से बोली, मुझे वृंदावन ले चलो। तीसरे दिन रासलीला समाप्त हुई। उसी दिन ज्ञान शंकर गायत्री को संग ले बड़े समारोह के साथ वृंदावन चले। सेशन जज के इजलास में एक महीने से मुकदमा चल पड़ा रहा था। अभियुक्तों ने फिर सफाई दी। आज मनोहर का बयान था। इजलास में एक मेला सा लगा हुआ था। मनोहर ने बड़ी निर्भीक दृढ़ता से साथ सारी घटना आदि से अंत तक बयान की और यदि जनता को अधिकार होता तो अन्य अभियुक्तों का बेदाग छूट जाना निश्चय था, किंतु अदालत जाप्ते और नियमों के बंधन में जकड़ी हुई थी। वह जानकर अनजान बनने पर बाध्य थी। मनोहर के अंतिम वाक्य बड़े मार्मिक थे। सरकार, माजरा यही है जो मैंने आपसे अर्ज किया। मैंने गौस खां को इसी कुल्हाड़ी से और इन्हीं हाथों से मारा। कोई मेरा साथी, मेरा सलाहकार, मेरा मददगार नहीं था। अब आपको अख्तियार है, चाहे सारे गांव को फांसी पर चढ़ा दें, चाहे काली पानी भेज दें, चाहे छोड़ दें। फैजू, विशेषज्ञ, दरोगा ने जो कुछ कहा सब झूठ है। दरोगा जी की बात तो मैं नहीं चलाता, और सरकार फैजू और विशेषज्ञ को अपने घर में बुलाए और दिलासा दें कि पुलिस तुम्हारा कुछ न कर सकेगी, तो मेरी सच झूठ की परख हो जाए और मैं क्या कहूँ। उन लोगों का काट का कलेजा होगा जो इतने गरीबों को बेकसूर पर फांसी पर चढ़वाए देते हैं। भगवान झूठ सच सब देखते हैं। विशेषर और फैजू की तो थोड़ी औकात है, और दरोगा जी झूठ की रोटी खाते हैं। पर डॉक्टर साहब, इतने बड़े आदमी और ऐसे विद्वान कैसे झूठी गंगा में तैरने लगे, इसका मुझे अचरज है। इसके सिवा और क्या कहा जाए कि गरीबों का नसीब ही खोटा है कि बिना कसूर के फांसी पाते हैं। अब सरकार से और पंचों से यही विनती है कि तुम इस घड़ी न्याय के आसन पर बैठे हो, अपने इंसाफ से दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। अदालत उठी, ये दुखियारे हवालात चले, और सबों ने तो मन में समझ लिया था कि भाग्य में जो कुछ पदा है वह होकर रहेगा। पर दुखहरण भगत की छाती पर सांप लौटता रहता था। उसे रह रहकर उत्तेजना होती थी कि अवसर पाऊं तो मनोहर को खूब आड़े हाथों लूं, किंतु मजबूर था क्योंकि मनोहर को सबसे अलग रखा जाता था। हाँ, वह बल्लाज को ताना दे देकर अपने चित्त की दाह को शांत किया करता था। आज मनोहर का बयान सुनकर उसे और भी चिड़ गई। जब चिड़िया खेत चुक गई तो यह हाँक लगाने चले। उस घड़ी अकल कहाँ चली गई थी जब एक जरा सी बात पर कुल्हाड़ा बांध कर घर से चले थे। उस समय मार्ग में उसे मनोहर अपना क्रोध उतारने का मौका मिल गया। बोला, आज क्या झूठ मूठ के बकवाद कर रहे थे। आदमी को तीर चलाने के पहले सोच लेना चाहिए कि यह किसको लगेगा। जब तीर कमान से निकल गया है तो फिर पछताने से क्या होता है। तुम्हारे कारण सारा गांव चौपट हो गया। अनाथ लड़कों और औरतों की कौन सुध लेने वाला है। बेचारे रोटियों को तरसते होंगे। तुम्हारे सारे गांव को मटिया मेट कर दिया तुमने। मनोहर को स्वयं आठों पहर वही शोक सताया रहता था। गौस खां का वध करते समय भी उसे यही चिंता थी, इसलिए उसने खुद थाने में आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। गांव को आफत से बचाने के लिए उसके किए जो कुछ हो सकता था उसने किया, और उसे दृढ़ विश्वास था कि मुझे चाहे कितने दुष्कृष्ट पर कितना ही पश्चाताप हो रहा हो, अन्य लोग मुझे क्षमा न समझते होंगे, मुझसे सहानुभूति भी रखते होंगे। मुझे जलाने के लिए अंदर की आग क्या कम है कि ऊपर से भी तेल छिड़का जाए। वह दुखहरण की भी कटु बातें सुनकर बिलबिला उठा, जैसे पके हुए फोड़े में ठेस लग जाए। कुछ जवाब न दे सका। आज अभियुक्तों के लिए प्रेमशंकर ने जेल के दरोगा की अनुमति से कुछ स्वादिष्ट भोजन बनवाकर भेजे थे। अपने उच्च सिद्धांतों के विरुद्ध वह जेल खाने के छोटे छोटे कर्मचारियों के भी खातिर खुशामद किया करते थे, जिससे वे अभियुक्तों पर कृपा दृष्टि रखे। जीवन के अनुभवों ने उन्हें बता दिया था कि सिद्धांतों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय वस्तु है। औरों ने तो इच्छापूर्ण भोजन किया, लेकिन मनोहर इस समय हृदय ताप से विकल था। इन पदार्थों की रुचिवर्धक सुगंध भी उसकी क्षुधा को जागृत न कर सकी। आज वह शब्द उसे कानों से गुजर रहे थे जो अब केवल हृदय में ही सुनाई देते। तुम्हारे कारण सारा गांव मटिया मेट हो गया। तुमने सारे गांव को चौपट कर दिया। हाँ, यह कलंक मेरे माथे पर सदा के लिए लग गया। अब यह दाग कभी न छूटेगा। जो अभी बालक है वे मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, उनके बच्चे मुझे गाँव का द्रोही समझेंगे। जब मर्दों के यह विचार हैं तो सब बातें जानते हैं, जिन्हें भली भांति मालूम है कि मैंने गाँव को बचाने के लिए अपनी ओर से कोई बात उठा नहीं रखी, और जो यह अंधेर हो रहा है और समय काफी है, तो भला स्त्रियां कहाँ कहती होंगी जो बेसहारा होती हैं। बेचारी विलासी गांव में किसी को मुंह न दिखा सकती है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया होगा, और क्यों न कहें। उनके सिर पर बीत रही हो तो कहेंगे क्यों न। अभी तो अगानी घर में खाने को जाएगी, लेकिन खेत तो बोए न गए होंगे। चैत में जब एक दाना भी न उपजेगा, बाल बच्चे दाने दाने को रोएंगे, तब उनकी क्या दशा होगी। मालूम होता है इस कंबल में खटमल हो गए, नोच डालते हैं, और यह रोना साल दो साल का नहीं। कहीं सब काले पानी भेज दिए गए तो जन्म भर का रोना है। कादर मियाँ का लड़का तो घर संभाल लेगा, लेकिन और सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, और यह सब मेरी करनी का फल है। सोचते सोचते मनोहर की झपकी आ गई। उसने स्वप्न देखा कि एक चौड़े मैदान में हजारों आदमी जमा है, फांसी खड़ी है और मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों आंखें मेरी घृणा की दृष्टि से ताक रही हैं, चारों तरफ से ध्वनि आ रही है। इसी ने सारे गांव को चौपट किया। फिर उसे ऐसी भावना हुई कि मैं मर गया हूं, और कितने ही भूत पिशाच मुझे चारों ओर घेरे हुए हैं और कह रहे हैं कि इसी ने हमें दाने दाने को तरसाकर मार डाला, यही पापी है, इसे पकड़कर आग में झोंक दो। मनोहर के मुख से सहसा चीख निकल गई। आंखें खुल गई। कमरा खूब अंधेरा था, लेकिन जागने पर भी वही पैशाचिक भयंकर मूर्तियां उसके चारों ओर मंडराती हुई जान पड़ती थी। मनोहर की छाती बड़े वेग से धड़क रही थी। जी चाहता था बाहर निकल भागूं, किंतु द्वार बंद थे। अकस्मात मनोहर के मन में विचार अंकुरित हुआ। क्या मैं ही यह सब होते देखने और सुनने के लिए जीऊं? सारा गांव और सारा देश मुझसे घृणा कर रहा है, भला आज भी मन मुझे गालियां दे रहा हो। उसने मुझे कितना समझाया लेकिन मैंने एक न मानी। लोग कहते होंगे सारे गांव को बधवा कर यह मुस्टंडा बना हुआ, इसे तनिक भी लज्जा नहीं, सिर पटक कर मर क्यों नहीं जाता? बल्लाज पर भी चारों ओर से बौछारें पड़ती होंगी, ये सुन सुनकर कलेजा फटता होगा। अरे भगवान, यह कैसा उजाला है! नहीं, उजाला नहीं है, किसी पिशाच की लाल लाल आंखें हैं मेरी ही तरफ लपकी आ रही। या नारायण, क्या करूँ? मनोहर की पिंडलियाँ कांपने लगी। यह लाल आंखें प्रतिक्षण उसके समीप आते जाती थी, वह न तो उधर देख ही सकता था और न उधर से आंख ही हटा सकता था। मानो किसी आसुरिक शक्ति ने उसके नेत्रों को बांध लिया हो। एक क्षण के बाद मनोहर के एक ही जगह कई आंखें दिखाई देने लगी। नहीं, प्रज्वलित अग्निमय रक्तमय नेत्रों का एक समूह है। धड़ नहीं, सिर नहीं, कोई अंग नहीं, केवल विदग्ध आंखें ही हैं जो मेरी तरफ टूटे हुए तारों की भांति सर्राटा भरती चली आती है। एक पल और हुआ, यह नेत्र समूह शरीर युक्त होने लगा और गौस खां के आहत स्वरूप में बदल गया। एकाएक बाहर धड़ाके की आवाज़ हुई। मनोहर बदाभास होकर पीछे की दीवार की ओर भागा, लेकिन एक पग में दीवार से टकरा कर गिर पड़ा, सिर में चोट आई। फिर उसे जान पड़ा कोई द्वार का ताला खोल रहा है। तब किसी ने पुकारा, मनोहर मनोहर। मनोहर ने आवाज़ पहचानी, जेल का दरोगा था, उसकी जान में जान आई। कड़क कर बोला, हाँ साहब, जागता हूँ। वह शास्त्रीय जगत से निकलकर वह फिर चैतन्य संसार में आया। उसे अब नेत्र समूह का रहस्य खुला। दरोगा की लालटेन की ज्योति थी जो किवाड़ की दरारों से कोठरी में आ रही थी। इसी साधारण सी बात ने उसे इतना सशंक कर दिया था, दरोगा आज गश्त करने निकलता था। दरोगा के चले जाने के बाद मनोहर कुछ सावधान हो गया। शंकोत्पादक कल्पनाएं शांत हुई, लेकिन अपने तिरस्कार और अपमान की चिंताओं ने फिर घेरा। सोचने लगा, वह एक है जो जुड़े हुए गांवों को आबाद करते हैं और जिनका यश संसार गाता है। एक मैं हूँ जिसने गांव को उजाड़ दिया। अब कोई भोर के समय मेरा नाम न लेगा ऐसा जान पड़ता था कि सभी डामिल जाएंगे, एक भी न बचेगा। अभी न जाने कितने दिन यह मामला चलेगा, महीना भर लगे, 2 महीना लग जाए, इतने दिनों तक मैं सबकी आंखों में कांटों की तरह खटकता रहूंगा। सब मुझे कोसेंगे, गालियां दिया करेंगे। आज जुखरन ने कहा ही सुनाया, कल कोई और ताने देगा। कादिर खां को भी यह कैद अखरती ही होगी, और तो और कहीं पर लाज भी न खुल पड़े। हाँ, मुझे अपनी जवानी पर भी तरस न आया, उसको के बारे में तो कुछ सोचा होता। मेरा लाल मेरे यहाँ तो, मैं अपने जवान बेटों को अपने यहाँ तो। हाँ भगवान, अब यह दुख नहीं सहा जाता। हाँसी अभी न जाने कब होगी, कौन जाने, कहीं सब के सब मेरा भी डामिल हो जाए। तब तो मरते दम तक इन लोगों के जले कटे वचन सुनने पड़ेंगे। बल्लाज तुझे कैसे बचाऊं? कौन जाने हाकिम ये फैसला करें कि यह जवान है, इसी ने कुल्हाड़ा मारा होगा। हाँ भगवान, तब क्या होगा, अपने ही आंखों से यह देखूंगा। नहीं, ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। नकटा जिए बुरे हवाल, बस एक ही उपाय है। हाँ।